వందే సచ్చిదానందం వందే సచ్చిదానందం వందే భోగిలాంఛిత యోగివాంఛిత చరణ పదం వందే పరమ పురాపరాపరం పూర్ణం ఖండ పరాపరం త్రిసంగ శుద్ధం సగబుద్ధ దుర్వేదం వందే సచ్చిదానందం వందే
మరియం ఔర్ యూసుఫ్ కే వివాహ కే కుచ్ రోజ్ పూర్వ కీ హీ బాత్ హై. एक रोज प्रभु ने अपने दूत गैब्रियल को इस धार्मिक और पवित्र कुमारी मरियम के पास गलीली भेजा, जो उस समय प्रार्थना में तल्लीन थी. प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रणाम प्रभु आपके साथ है.
कौन है आप? ये क्या कह रहे हैं?
मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है. देखिए, आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी. उसका नाम ईसा रखिएगा. वे महान होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे. प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेंगे. वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा.
क्या मैं गर्भवती होंगी? मगर ये कैसे हो सकता है? अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ.
आप घबराएं नहीं मरियम, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति छाया बनकर आप पर पड़ेगी. इसलिए आपसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो पवित्र होगा और ईश्वर का पुत्र कहलाएगा. देखिए, आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ को भी वृद्धावस्था में पुत्र उत्पन्न होने जा रहा है.
सच? एलिजाबेथ गर्भवती है?
हाँ मरियम, हाँ. ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है.
देखिए, मैं तो प्रभु की दासी हूँ. आपका कथन मुझ में पूरा हो.
इस तरह मरियम की सहर्ष स्वीकृति ने ईश्वर के मुक्ति कार्य का द्वार खोल दिया. मरियम ने ईश्वर के प्रति अपने प्यार और विश्वास के वशीभूत हो उनके मुक्ति कार्य में अपने संपूर्ण जीवन को न्योछावर कर दिया. मरियम के माध्यम से ईश्वर का पुत्र संपूर्ण मानव जाति का एक सदस्य बनने जा रहा था. इस तरह से मरियम वो प्रथम मानव प्राणी है जिसने ईश्वर के मुक्ति विधान के लिए अपना जीवन सौंप दिया. इस प्रकार ईश्वर ने मरियम को अपना सहयोगी चुना और मरियम मुक्ति इतिहास का शुरुआती बिंदु बन गई, जहां से शुरू होती है ईश्वर के मुक्ति विधान का चक्र। वास्तव में ईश्वर ने मरियम पर दबाव नहीं डाला, वरन उसके समक्ष खुली इच्छा व्यक्त की। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में विभिन्न कार्यों के माध्यम से ईश्वर मनुष्य का गंभीर और स्वतंत्र जवाब तथा व्यवहार चाहते हैं कि मनुष्य उस कार्य को ईमानदारी और लगन तथा साहस से करे और अपने जीवन के इन क्षणों का सदुपयोग करे। पर वही वे मानव की आजादी का भी सम्मान करते हैं। यही तो है ईश्वर का वरदान कि मनुष्य उनकी इच्छा उनकी योजना को समझकर उसके अनुसार कार्य करे। ईश्वर ने अपने दूत को किसी संपन्न देश या महल की राजकुमारी के पास नहीं भेजा, बल्कि राजनैतिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से पिछड़े राष्ट्र गलीली के एक गांव नाजरेत भेजा। प्रश्न ये था कि आखिर इस पिछड़े राष्ट्र में ईश्वर को अपने मुक्ति विधान का कौन सा स्रोत दिखा, ईश्वर मानव से क्या अपेक्षा कर रहे थे। ईश्वर की कृपा से मरियम का गर्भधारण ही वो समय था जब ईसा ने इस विश्व में अपनी अनंत उपस्थिति की शुरुआत की। उधर मरियम की कुटुंबिनी एलिजाबेथ के पति को जब स्वर्गदूत ने उनके पिता बनने की खबर देने के लिए प्रवेश किया, तो
ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी पत्नी एलिजाबेथ तो अब बूढ़ी हो चली है, उसमें अब क्या ताकत बची है कि वो बच्चे को जन्म दे।
ज़कारियस, क्या तुम सर्वशक्तिमान प्रभु को नहीं जानते हो? उनके लिए तो सब कुछ संभव है। एलिजाबेथ एक पुत्र को जन्म देगी और तुम अपने उस पुत्र का नाम योहन रखोगे। वो प्रभु की दृष्टि में महान होगा। वो अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इज़राइल के बहुत से लोगों का मन प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख होगा। तुम्हारा पुत्र योहन पिता और पुत्र का मेल कराने, स्वेच्छाचारियों को सद्बुद्धि प्रदान करने और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करने का कार्य करेगा। वो ईश पुत्र का अग्रदूत बनेगा।
मगर इस पर मैं कैसे यकीन करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो चला हूं और मेरी पत्नी एलिजाबेथ भी बूढ़ी हो चली है।
ज़कारियस, मैं प्रभु का दूत गब्रियेल हूं, सदैव ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं। उन्हीं की आज्ञा से मैं तुमसे बात करने भेजा गया हूं। देखिए, जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होंगी उस दिन तक आप बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने मेरी बातों पर अविश्वास किया है।
क्या